जिंदा रहेगी, लेकिन अगर उसको पानी से निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो फड़फड़ाएगी, चंद लम्हों में वो इंतकाल कर जाएगी। तो मस्जिद में मोमिन इस तरह रहता है जिस तरह मछली पानी में। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह पानी के बगैर मछली को जिंदा प्राण नहीं होती, जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह मस्जिद के बगैर मोमिन की रूहानियत जिंदा नहीं रह सकती। मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि उसका दिल मस्जिद में मुअल्लक रहे, लगता रहे, मस्जिद से बाहर जाए तो भी दिल मस्जिद ही में लगा रहे, जोहर के बाद गया दिल मस्जिद में लगा है क्योंकि असल में वापस आना है, असल पर के गया दिल मस्जिद में लगा हुआ है क्योंकि मौलवी में वापस आना है, ये मौलवी की शरारत होनी चाहिए। और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह रहता है जिस तरह पिंजरे में कोई चिड़िया रहती है, किसी चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो फड़फड़ाएगी और निकलने का बहाना तलाश करेगी, किसी तरह निकलकर आजादी नसीब हो जाए। हम देखते हैं कि हमारे पास मुसलमान भाई इसी तरह फड़फड़ाते हैं, मस्जिद में आएंगे सबसे लाख से जब खुतबा शुरू हो जाएगा तब मस्जिद में आएंगे, बात कर जाएंगे, मस्जिद में कदम भी उतर नहीं पड़ता। हफ्ते में एक दिन आने की तौफीक मिली, रोड पर आए रोड ही से बाहर गुजर गए, खुतबा जिमा के वक्त आते हैं बाहर खड़े रहते हैं, मस्जिद में कदम भी नहीं रखते, दो रकात में नमाज पढ़ी पढ़कर साफ फौरन निकल गए। ये किसी मोमिन की शान नहीं है। मोमिन की शान तो ये है कि उसका दिल मस्जिद में मुअल्लक रहता है और मस्जिद के बगैर उसको सुकून और करार नहीं आता। मस्जिद के अंदर बबागे महल अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अगर कोई मोमिन मस्जिद में आए, मस्जिद में आने के बाद करार नसीब न हो, उसके रूह को करार ना आ जाए, तो खुदा की कसम उसके दिल में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन कामिल का दिल नहीं हो सकता। मोमिन तो वो है कि मस्जिद में आए तो खराब नसीब होता है। हमारा हाथ बहुत बदता है, ये जो हमारा तर्ज अमल है कि हम मस्जिदों से घबराते हैं, मस्जिद में आते नहीं और मस्जिदों से बहुत दूर रहते हैं और जिन्हें में सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ने निकल जाते हैं, ये इंतहाई मकरूह अमल है, ना पसंदीदा अमल है, इसकी कराहती को इरादे नहीं, इसके इससे बाहर आना चाहिए। चंद हदीसें मैं पेश करता हूं, उन चंद हदीसों को सुने, याद करें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसलिए कि हमें जिन्हें बताना है वो तो आए नहीं है, आप लोग तो माशाल्लाह आते ही रहते हैं, पहले आते हैं, अल्लाह ताला के जज्बे में आपको मजीद जज्बा अता फरमाए। जो लोग आखिर से आते हैं जिन तक बातें पहुंचाना है, सुए इत्तेफाक करिए कि वो पहले आते भी नहीं उन तक हम की बातें पहुंचाए, तो आएंगे उस वक्त जब हमारी बातें मुकम्मल हो चुकी होंगी। अब तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके घर में ऐसे अफराद है तो आप हमीसे याद करें, याद में सुना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात को सुनकर निशान फरमाया, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। अब मस्जिद से मोहब्बत करने का माना क्या? दावा कर रहे हैं मस्जिद से मोहब्बत है। एक कोई इंसान जो कभी मस्जिद में आया हो फकत साल में दो बार, ईद उल अजहा के मौके पर और ईद उल फितर के मौके पर आता है, उससे भी पूछे मस्जिद की मोहब्बत है, कह हाँ बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि खाली दावा कर लिया जाए या मस्जिद का दीदार कर लिया जाए या रोड पे नमाज पढ़ के वहीं से वापस चले जाए, मस्जिद के अंदर खत्म भी ना हो या मस्जिद में चंदा खारिज दे दे, बिना सुना मस्जिद में चंदा देना, तामीरी काम कराना, मस्जिद का दीदार करना, ये सारी बातें मोहब्बत की अलामत और मोहब्बत की दलील है। लेकिन मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत और सबसे बड़ी दलील ये है कि इंसान मस्जिदों को आबाद कर रहे, मस्जिदों को आबाद कर रहे, ये मोहब्बत की दलील है। तो हुजूर ने फरमाया जो लोग मस्जिदों को आबाद करके मोहब्बत का दावा मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं, उनकी शान ये होती है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं, अल्लाह उसे मोहब्बत करता है। दूसरी हदीस में है कयामत के दिन अल्लाह अपने कुछ बंदों की जानिब नजर रहमत फरमाएगा और कहेगा कहां है मेरे पड़ोसी, मेरे पड़ोसी अल्लाह इरशाद फरमाएगा जो लोग मेरी मस्जिदों को आबाद करते हैं वही है पड़ोसी। अब आप नाम आगे फरमाए पड़ोसी के असमत की पड़ोसी से जाहिर होती है। कोई शख्स किसी बड़े इंसान से पड़ोसी हो तो भी फर्ज करता है मैं बड़ा पड़ोसी हूँ। कोई किसी वजीर का किसी मिनिस्टर का किसी दरोगा का पड़ोसी हो वजीर आला का वजीर आजम का पड़ोसी हो तो फर्ज करता है कि मैं फला का पड़ोसी हूँ। लोग उसको उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं कि फला की बारगाह में तुमको हासिल है। इसी तरह कोई अल्लाह के वली का पड़ोसी हो तो उसको भी अजीब शान मकाम हासिल होता है। जरा सोचिए जिनको अल्लाह को अपना पड़ोसी कह रहा हो उनके अजमो को शान करता अल्लाह से कोई लगा सकता है। तो अल्लाह ने उनको अपना पड़ोसी कहा कि कहा है हमारे पड़ोसी उनको हासिल किया जाए तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे पड़ोसी को ही अल्लाह फरमाएगा मेरे पड़ोसी को है जो हमारी हमारे घर को आबाद करते। एक हदीस पाक में और है जो कहते हैं सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान किया हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हुजूर सबने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वजू करे अच्छी तरह वजू करने के बाद वो मस्जिद में आए तो वो अल्लाह का मेहमान है। हुजूर ने फरमाया कि अच्छी तरह वजू करके मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान है और हर मेहमान का मेजबान का हक यह है कि मेजबान मेहमान की तआज़ीम और तकरीम करे। आपके मेहमान आते हैं तो आप पर आपके मेहमानों का हक यह है कि आप उनकी तआज़ीम और तकरीम करें। तआज़ीम और तकरीम क्या? तआज़ीम और तकरीम यह कि आप उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम करें रहने का इंतजाम करें खुश अखलाकी के साथ पेश आए उनकी जरूरियात को पूरा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो काबिल वजू करके मस्जिदों का रुख करते हैं तो इस हाल में मस्जिद में आते हैं कि वो अल्लाह के मेहमान होते हैं और मेजबान पर मेहमान का ये हक है कि वो उनके मेहमान की तआज़ीम और तकरीम करे। हम बंदे हैं गुलाम हैं अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो अल्लाह ने हमें इशरफ अता फरमाया कि अल्लाह ने हमें अपना मेहमान बनाया है। अब अल्लाह हमारी तकरीम कैसे करेगा हमारी तआज़ीम कैसे करेगा? वो तो हमारा खालिक है वो तो हमारा मालिक है वो तो हमारा परवरदिगार है हमें पैदा करने वाला है हम उसके मोहताज हैं वो हमारा मोहताज नहीं तो अल्लाह हमारी तकरीम कैसे करेगा? तो तकरीम क्यों करेगा कि अल्लाह हमारा अपने गुनाहों को बख्श में बख्श देते जब तक उसे खाने पीने का रहने का इंतजाम करवा देगा इसका तकरीम करेगा। ये हदीस पाक जिसे मस्जिदों को आबाद करने वालों की असमतों का इजहार हो रहा है और यही हदीस पाक दूसरे मजमून के साथ एक और मकाम पर यूं है जिसको अल्लाह ने मस्जिद लगा करते हैं कि जब कोई शख्स वजू करके मस्जिद में आता है अच्छी तरह वजू करके आता है तो अल्लाह उसको अपना मेहमान बना लेता है और फिर हर मेजबान के मेहमान की तकरीम करता ही है तो अल्लाह हमें के भक्तों की यह तकरीम करता है कि उनको जन्नत के घर अता फरमा देता है उनके गुनाहों को माफ करता है। ये चंद हदीसें ऐसी हैं जो उन लोगों की आज़मतों को बयान कर रही हैं जो मस्जिदों को आज़ाद रखते हैं मस्जिदों को वीरान नहीं होने देते उनका दिल मस्जिदों में लगा रहता है मस्जिदों में मुअल्लक रहता है अगरचे वो मस्जिदों से बाहर रहे लेकिन बाहर रहने की हालत में भी दिल मस्जिद ही में लगा रहता है। एक हदीस पाक और है कि हुजूर सबने कायनात से तो इशारा फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिदों की मेज़े होते हैं मेज माने कील होता है जिसका कील लकड़ी में ठोक दी जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे वो है जो मस्जिद के कीले होते हैं मस्जिद में ठोक दिए जाते हैं जब तलाश के लिए मस्जिद में मिलते हैं। कुछ ऐसे अल्लाह वाले होते भी हैं ऐसे मुसलमानों को मैं जरूर देखा कि 24 घंटे का अक्सर हिस्सा मस्जिद में रहते हैं उनको तलाश करने वाले तलाश करने आते हैं तो मस्जिदों में पाते हैं। ये लोग अल्लाह ने उनको मस्जिदों पर की मस्जिदों के मेज़े बना दिया। अब उसके बाद हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग अगर किसी मजबूरी की वजह से मस्जिद में नमाज सके मस्जिद में हाजिर ना हो सके तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते होते हैं जो उनकी इयादत करने के उनके घर का रुख करते हैं उनके घर में जाकर उनकी इयादत करते हैं। ये उन लोगों की शान मस्जिदों को आबाद करते हैं। कुरान मुकद्दस में सूरह बुखार के अंदर मौजूद है फमा बकर अलैहिम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु कि उन लोगों पर अल्लाह ही जमीन रही नहीं आसमान रहा और इस मकाम पर वजू की शान फरमाया, अगर कोई शख्स अच्छी तरह वजू करे और मस्जिद का रुख करे और इमाम के पीछे आकर जमात के साथ नमाज पढ़े तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ करता है, मस्जिद से जाता है गुनाहों से पाक साफ होकर जाता है। ये है जमात के लिए। अब एक दिन में पांच फरमाते हैं, सलात जमात अफ़ज़ल मिन सलात अहले वहदतुह جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھی فرض ادا ہو گیا، لیکن جماعت سے پڑھنے کے 25 گنا زیادہ ثواب۔ آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے تجربے کار ہیں، گردے کرتے ہیں، آپ خود بتائیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ نوکری کرنے کو زیادہ تنخواہ ملے گی تو آپ کم تنخواہ والی نوکری کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی۔ آپ اگر تیار کرتے ہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام پر جا کر بیٹھوں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو آپ وہاں جائیں گے، اور جہاں نقصان کا خدشہ ہے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ زندگی کا معاملہ ہے کہ آپ منافع 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 دیکھتے ہیں، منفرد دیکھتے ہیں، کہاں زیادہ فائدہ ہے کہاں نقصان ہے۔ جب آپ دنیاوی معاملات کے سب دیکھتے ہیں تو وہ اخروی معاملات پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، کس عمل میں زیادہ ثواب ہے، کس عمل میں محرومی ہے۔ تنہا نماز پڑھنے ہیں بلا سوا ثواب تو ہے، بلا سوا فرض تو ثابت ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بندہ مومن جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو 25 گنا زیادہ ثواب پاتا ہے۔ اور جب انہوں نے عمر والی حدیث بات کی جس میں 20 درجات کے الفاظ ہیں، یعنی 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ان سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مسجدوں کی اہمیت کیا ہے، کہ لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں، پرندے کی طرح پڑپڑاتے ہیں اور جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے حدیثوں کی کیا صدائے ہیں ان کو سمجھ لینا ہے۔ عجیب ہمارا معاملہ ہے، کچھ لوگ مسجد میں آتے تو ہیں لیکن آتے آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ پیچھے رہے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہو فٹا سے دوڑتے ہوئے نکل جائے، قصدن بغیر کسی عذر کے تاخیر سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ صفِ اول کی کیا فضیلت ہے، صفِ اول کا پہلی صف پر آگے رہنے کا کیا مقام ہے۔ آپ حدیثوں کو سنیں گے اور حدیثوں میں نگاہیں دوڑائیں گے تو معلوم ہوگا کہ صفِ اول کی کیا اہمیت ہے۔ میں خود دیکھتا ہوں جماعت قائم ہوتی ہے، بس آپ کا صفِ اول خالی ہے، پیچھے لوگ سب لگا دیتے ہیں، انتہائی مقروع عمل ہے۔ پہلے صفحے اول مکمل ہو، صفحے اول مکمل ہو جائے تو صفحے اول کی صفحے ثانی کی باری آتی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو پیچھے والے آپ چلیے، وہ کہتے نہیں آپ جائیے، وہ کہتے نہیں آپ جائیے، سارا آگے آگے کھڑا کرتا ہے۔ یہ عمل بھی انتہائی مقروع ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ ہم صفحے اول میں رہیں گے، آپ دوسروں کو اپنے آپ کو ترجیح دیں، یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ اگر آگے کا مقام خالی ہے آپ جا سکتے ہیں، دوسروں کو بڑھا رہے ہیں کہ آپ کا عمل درست نہیں ہے، مقبول ہے، آپ خود آگے بڑھیں، یہ عبادت تعبد میں آگے رہنا چاہیے، گناہوں کے پیچھے عبادت میں آگے، اس معاملے میں کسی اور مقبول کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک وہاں مسئلہ ہے کہ اگر سب سے اوپر میں جگہ خالی ہے، پیچھے کوئی طالب علم ہے، ان کے بغل میں استاد ہے، تو وہ اپنے استاد سے نہ کہہ کے آپ آگے جائیں، وہ خود آگے بڑھتا ہے، یہ ہے عمل۔ تو صفحے اول میں یہ مقام ہے۔ حضرت ثانیہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا والثانی مرة، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے تین بار بخشش کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے ایک بار، فقط ایک بار۔ تو جب ہم صفحے اول میں رہتے ہیں تین بار دعا کے حقدار ہیں، گویا کہ حضور یہ فرماتے تھے اے اللہ صفحے اول میں رہنے والوں کو بخش، اے اللہ صفحے اول میں رہنے والوں کی نجات ان کو نجات دے دے، اے اللہ صفحے اول میں رہنے والوں کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور دعا فرما رہے، کوئی معاملہ انسان کو نہیں فرما رہا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلمون انما فی الصف الاول لکانت قرعہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صفحے اول میں کیا اجر و ثواب ہے تو قرآن نازل ہو आगे आने के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहे, नहीं मैं आगे जाऊंगा, नहीं मैं आगे जाऊंगा, झगड़ा इतना बढ़ेगा कि पूरा नाजी होगी। जैसे कंपटीशन होते हैं, मुकाबले होते हैं, बताओगा कई लोग गिर जाते हैं और निजाम को खत्म करने में पूरा नाजी की जाती है। जन बच्चियों में नाम लिखे जाते हैं, उनको छाड़ा जाता है, जिसका नाम आता है वो कामयाब माना जाता है। तो कुरान नाजी ये है, तो रोज फरमाते हैं अगर लोगों को मालूम हो जाए कि सफे अकबर में क्या अजर सवाब है, तो इतना ज्यादा झगड़ा पड़ जाए कि लोग कुरान नाजी करने लगे। ये हदीसें क्यों बयान की जा रही है? सफे अकबर की और मस्जिद में आगे रहने की असमतों और अहमियत को बयान करने के लिए हदीसें लोगों ने बयान करते हैं। अब जो लोग पीछे रहते हैं उनको सोचना चाहिए, हालांकि आगे आने की ताकत है, उनके पास फुर्सत है, आगे जगह खाली है, इसके बावजूद कसदम पीछे रहते हैं ताकि जल्दी से मस्जिद से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। उनको सोचना चाहिए वो कहां से कहां जा रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकलकर अपने आप को जहन्नम के करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हदीस पाक और सवाल फरमा ले
मस्जिद में जल्द आने और सफे अकबर में शामिल होने।